वसुधा की बर्थडे पार्टी शुरू हो चुकी थी और मेहमानों ने शिरकत करनी शुरू कर दी थी। आयशा और नक्श इशिका को बदनाम करने के लिए पूरा प्लान बनाकर बैठे थे, लेकिन राधिका ऐसे नहीं होने देना चाहती थी। राधिका जानबूझकर वसुधा को बर्थडे विश करने के लिए नहीं गई और इशिका को वहां से दूसरी तरफ ले जाने लगी। इस बीच मित्तल फैमिली वहां पहुंच चुकी थी। गौतम ने बातों ही बातों में बताया कि उनके पास मैडम मर्चेंट यानी राधिका की माँ की एक तस्वीर है। राधिका के दिमाग में अपनी माँ से जुड़ी सारी यादें धुंधली हो चुकी थीं। उन्हें उसका चेहरा तक याद नहीं था और न ही कोई तस्वीर थी। ये सब जानकर गौतम को काफ़ी हैरानी हुई और उसने पूछा, क्या आपकी उनसे बात नहीं होती?
नहीं, मैं पिछले कई सालों से उनके कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ और मुझे कुछ सालों पहले पता चला कि एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई,
राधिका ने भारी आवाज में कहा। कोई बात नहीं, जब वो फोटो आ जाएगी तो मैं आपको और मिस सिंघानिया को जरूर दिखाऊंगा, गौतम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इशिका को समझ नहीं आया कि राधिका को फोटो दिखाना तो बनता है, पर गौतम उसे मैडम मर्चेंट की फोटो क्यों दिखाना चाहते हैं। आगे कोई और बात शुरू होती उससे पहले नैना ने कहा, मिसेज राजवंश के आसपास भीड़ थोड़ी कम हो गई है, चलिए चलकर उन्हें बर्थडे विश करते हैं। मित्तल फैमिली ने राधिका और इशिका को बाय कहा और फिर वसुधा के पास चले गए। जब राधिका और इशिका वहां खड़ी थीं, तब आसपास के लोग बातें कर रहे थे। पहले उनकी बातें इस बारे में थीं कि आज राजवंश फैमिली की बहू यानी अभिमन्यु की पत्नी सबके सामने आने वाली है, तो फिर धीरे धीरे उनका टॉपिक बदलकर इशिका पर आ गया था। उन सबको यही लगता था कि अभिमन्यु की पत्नी इसलिए वापस आई है क्योंकि अभिमन्यु अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ रखने लगा है। राधिका ने वो सब सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो इशिका से बोली, इशिका मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या तुम मुझे घर ले जाओगी? इशिका समझ गई थी कि राधिका उसे वहां से क्यों हटाना चाहती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई क्योंकि राधिका उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। इशिका ने उनकी बात पर हामी भरी और फिर कहा, ठीक है मैं आपके घर ले जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? राधिका ने पूछा। मेरा मैरिज सर्टिफिकेट, इशिका ने जवाब देते हुए कहा। राधिका को थोड़ी हैरानी हुई थी कि इशिका अपना मैरिज सर्टिफिकेट क्यों दिखाना चाहती है, लेकिन फिर भी उसने हाँ कह दिया था। वहीं इशिका के पास और कोई रास्ता नहीं था जिससे वो राधिका को यकीन दिला सके। इस वक्त उसने अपना मोबाइल लिया हुआ था जबकि उसका बैग अंदर था। जैसे ही इशिका अंदर जाने को हुई तभी उसने देखा अभिमन्यु पार्टी में आ गया है। उसने वही सूट पहना था जो वसुधा ने उसके लिए तैयार करवाया था। अभिमन्यु सीधा अनाउंसिंग एरिया में गया और माइक हाथ में लेकर वसुधा की तरफ देखकर बोला, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माई ब्यूटिफुल लेडी, आप बस मेरे साथ में ऐसे ही उम्र भर रहिएगा। वसुधा ने अभिमन्यु को इशारे से अपने पास बुलाया। जब अभिमन्यु उनके पास गया तो उन्होंने अभिमन्यु को हक कर लिया। वो अभिमन्यु को सहलाते हुए बोली, तुम्हें बाकी लोगों की तरह फॉर्मैलिटी करने की जरूरत नहीं है और तुम्हारा उम्र भर साथ निभाने वाली अब आ गई है, हमेशा उसके साथ रहना और उसके साथ ही बूढ़े होना। अभिमन्यु उनसे अलग हुआ और वसुधा की आंखों में देखते हुए इंटेंस वॉइस में कहा, जरूर दादी, मैंने आज तक आपकी कोई बात टाली है जो अब टालूंगा। अभिमन्यु के कहते ही वसुधा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी उनके पास खड़े एक आदमी ने पूछा, मिस्टर राजवंश, हर कोई पार्टी में शिरकत कर चुका है लेकिन आपकी पत्नी मिसेज राजवंश अभी भी नहीं आई है। उसके पूछते ही अभिमन्यु की निगाहें इशिका को ढूंढने लगी, लेकिन इशिका राधिका को लेकर दूसरी तरफ जा चुकी थी इसलिए उसको दिखाई नहीं दी। अभिमन्यु ने जवाब में कुछ नहीं कहा तो बाकी सब लोग अभिमन्यु की पत्नी के बारे में वसुधा से सवाल पूछने लगे थे। अभिमन्यु इशिका को ढूंढने के लिए जाना चाहता था, लेकिन तभी उसके पास पृथ्वी का कॉल आया। पृथ्वी ने कॉल पर कहा, सर मिस प्रणाली कपूर आ गई है। अचानक अभिमन्यु के चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें किसने कहा था उसे यहाँ लाने के लिए? मैंने उन्हें नहीं कहा था, लेकिन आप तो जानते हैं कि दादी का बर्थडे है और ऐसे मौके पर वो आने की जिद करने लगी, ऊपर से उनकी हालत खराब रहती है तो मैं मना नहीं कर पाया, पृथ्वी ने सफाई दी। फिर वो कुछ पल रुककर बोला, सर क्या आप अभी भी श्योर हैं कि आज आप अपनी और मिस सिंघानिया की शादी सबके सामने रिवील करने वाले हैं? और तुम्हें ये क्यों लगा कि आज मैं सबके सामने इशिका और अपना रिश्ता नहीं रिवील करूंगा? अभिमन्यु ने पूछा। मैं बस मिस कपूर के बारे में सोच रहा था, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि वो आपकी पत्नी है, ऊपर से वो बीमार भी रहती है, उन्हें सच का पता चला तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फिर वापस लोग मिस सिंघानिया पर उंगली उठाएंगे, पृथ्वी ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम्हें इशिका के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं काफी हूँ, बाकी कैसे क्या करना है मैंने पहले से ही प्लान कर रखा है, अभिमन्यु ने सख्ती से जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुककर बोला, देखा जाए तो अच्छा हुआ जो आज वो यहाँ आ गई है, अगर उसे मेरी और इशिका की शादी के बारे में पता चलेगा तो उसके दिल में जो भी गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी और वो मुझसे भी दूर रहेगी, पृथ्वी ने उसकी बात पर हामी भरी। अभिमन्यु ने आगे पूछा, कहाँ है वो? वो एक्चुअली हॉस्पिटल गाउन में थी तो आयशा उसे चेंज करवाने के लिए ले गई, पृथ्वी ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने आगे कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया था। उसे एक सही लम्हे का इंतजार था जब वो अपने और इशिका के रिश्ते के बारे में सबको बता सके। वहीं दूसरी तरफ इशिका राधिका के साथ अंदर की तरफ जाने लगी ताकि उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सके। जैसे ही वो लोगों की भीड़ से अलग हुए उन्हें सामने रोहन दिखाई दिया।
रोहन को भी अकेले रहना पसंद था। इशिका को देखते ही रोहन उसके पास आया और बोला, डॉक्टर मर्चेंट, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, बस 2 मिनट चाहिए। तुम बात कर सकती हो, मैं इंतजार कर लूंगी, राधिका ने इशिका को कंफर्टेबल करने के लिए कहा। इशिका ने हाँ में सिर हिलाया और फिर दूसरी तरफ जाकर रोहन से कहा, जो भी कहना है जल्दी कहो, मैं मिसेस सिंघानिया को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। मुझे तुमसे बस ये पूछना था कि क्या तुम्हारे और अभिमन्यु के बीच में सच में कुछ चल रहा है? ऑफिस में सब तुम दोनों के बारे में बातें बना रहे थे, क्या तुम दोनों साथ में हो? रोहन ने सीधे सीधे पूछा। इशिका उससे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी और वैसे भी अभिमन्यु आज सबको बताने ही वाला था, इसलिए उसने जवाब में कहा, हाँ, मैं और अभिमन्यु। इशिका की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रोहन उसे बीच में काटते हुए सख्ती से बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम्हें अपने लेवल का इंसान ढूंढना चाहिए था, जबकि वो शादीशुदा है, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, बीमार रहने के बावजूद उसने उसे डिवोर्स नहीं दिया। रोहन इशिका को डांटना चाहता था लेकिन उसकी पोजीशन की वजह से वो कुछ कह नहीं पाया। उसने गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ उसकी पत्नी कौन है। हाँ, कौन है उसकी पत्नी? इशिका ने जल्दी से पूछा। उसका नाम प्रणाली कपूर है, वो उसके साथ लंदन में ही रहती थी। मैंने सुना कि वो बहुत ज्यादा बीमार थी, इस वजह से यहाँ नहीं आ सकती थी। उसका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है और अब वो थोड़ी ठीक है, तो थोड़े टाइम पहले ही इंडिया आई थी, लेकिन अभिमन्यु भी उसे आज खास मौके पर घर लाना चाहता था। थोड़ी देर पहले ही पृथ्वी उसे यहाँ पार्टी में लेकर पहुंचा है। देखो इशिका, तुम डॉक्टर मर्चेंट हो और लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, इन सबसे दूर रहो, रोहन ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। इशिका को समझ नहीं आया कि वो रोहन को क्या जवाब दे, और ये प्रणाली कपूर का नाम उसके लिए नया निकल कर आया था। इशिका को चुप देखकर रोहन ने पूछा, अच्छा बताओ तुम कहाँ जा रही हो? मुझे मिसेस सिंघानिया को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना है, इशिका ने बताया।
ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं भी तुम्हारे पति को देखना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल, डॉक्टर मर्चेंट ने किसी खास इंसान को ही चुना होगा, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने पति के साथ खुश रहो, रोहन ने जवाब दिया। इशिका ने उसे साथ आने की सहमति दे दी थी। रोहन और इशिका मिसेस सिंघानिया के पास आए, फिर वो दोनों आगे जाकर एक प्राइवेट रूम में गए। इशिका ने उसे खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बंद था। इशिका ने राधिका की तरफ देखकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि कमरा अंदर से बंद है, क्योंकि ये तो दादी का प्राइवेट रूम है, दादी बाहर है तो फिर अंदर कौन हो सकता है? इशिका राधिका से बात कर ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर से आयशा आई। उसने इशिका की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो इशिका? ये एरिया राजवंश फैमिली मेंबर्स के लिए है, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, तुम अंदर क्या कर रही हो? ये दादी का कमरा है, मैं तो बस अपना बैग लेने के लिए यहाँ आई थी, इशिका ने जवाब दिया। मैं यहाँ आंटी के साथ हूँ, अभिमन्यु चाचू की वाइफ के साथ, वो अंदर चेंज कर रही थी तो मैं बस हेल्प करने के लिए आ गई, तुम अपना बैग लेने फिर आ जाना, उन्हें परेशान करना सही नहीं होगा, आयशा ने इशिका को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा। क्या तुम श्योर हो कि अंदर जो है वो अभिमन्यु की वाइफ ही है? इशिका ने आयशा को घूरते हुए पूछा। बिल्कुल, आयशा ने सिर हिलाकर जवाब दिया। तो तुम्हें क्या लगा, तुम इस कमरे में चेंज करने वाली थी क्या? कम ऑन, दादी को बस गलत फहमी हुई है, ज्यादा हवा में मत उड़ो, उनकी वाइफ अंदर जो मौजूद है वो है, और वो भी पिछले 2 साल से। आयशा कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से बात कर रही थी, इसीलिए राधिका ने उसे डांटते हुए कहा, आयशा तमीज से बात करो। मॉम, मैं बस इसे इतना समझाना चाहती हूँ कि यहाँ से चली जाए, वरना आज पूरी पार्टी में इसका बहुत मजाक बनने वाला है, दिल अलग से टूटेगा, आयशा ने राधिका से नरमी से कहा। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी प्रणाली बाहर आई। बीमारी की वजह से वो काफी दुबली पतली थी, हाइट भी लगभग 5 फुट 1 इंच के करीब थी। अगर वो अभिमन्यु के पास खड़ी होती तो उसके आगे बहुत छोटी दिखती। उसने इस वक्त वही दूसरा गाउन पहना हुआ था जो आयशा ने इशिका के जैसा लिया था। गाउन उसके काफी बड़ा था, वो उसमें अनकंफर्टेबल हो रही थी। शोल्डरलेस होने की वजह से वो अपने कंधों को ढककर खड़ी थी। बाहर आते ही प्रणाली की नज़र इशिका के ऊपर गई। इशिका ने बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल किसी डिज्नी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। हम दोनों की ड्रेस एक जैसी है, मुझे लगता है कि मुझे चेंज कर लेना चाहिए, वैसे भी ये मुझे फिट नहीं है, प्रणाली ने इशिका की तरफ देखकर धीरे से कहा। प्रणाली अंदर जाने को हुई तभी आयशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चेंज आपको नहीं, इसे करना चाहिए, आज आप इस पार्टी की शान बनने वाली हैं और ये बस एक जबरदस्ती घुस कर आई हुई गेस्ट है, बोलते हुए आयशा ने इशिका की तरफ देखकर कहा। इशिका, जाओ जाकर चेंज करके आओ, मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये ड्रेस मेरे लिए दादी ने डिसाइड किया था। तुमने जानबूझ कर किया ना ऐसा, ड्रेस सिलेक्ट करते वक्त तुम वहीं पर थी, इशिका ने गुस्से में कहा। वो आयशा की चाल समझ गई थी। इससे पहले इशिका और आयशा के बीच कोई बहस होती, राधिका ने सख्ती से कहा, इशिका तुम यहाँ अपना बैग लेने के लिए आई थी तो वो लो और चलो। इशिका हैरान रह गई क्योंकि राधिका ने पहली बार उससे इतनी सख्ती से बात की थी। इशिका ने जवाब में कहा, मैं बस अपना मैरिज सर्टिफिकेट आपको दिखाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। राधिका ने गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिलाया, उसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इशिका अंदर जाने लगी तभी उसकी नज़र वहां खड़ी प्रणाली पर गई। इशिका प्रणाली से बात नहीं करना चाहती थी लेकिन प्रणाली ने पूछा, तुम कौन हो? आंटी, मैंने आपको बताया था ना
ये वही लड़की है जिसको दादी ने गलती से अपनी बहू समझ लिया था और मजबूरन अभिमन्यु चाचू को इसे घर लाना पड़ा था। आज लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी, सबको यही लगता है कि ये अभिमन्यु चाचू की गर्लफ्रेंड है, आयशा ने बिना कुछ छुपाए सीधे सीधे बता दिया, जिस पर राधिका गुस्सा हो गई। इशिका ने आयशा की बात को पूरी तरह नजरअंदाज किया और प्रणाली को घूरते हुए पूछा, सो मिस कपूर, क्या तुम सच में अभिमन्यु की वाइफ हो? इशिका के सवाल को सुनकर प्रणाली घबरा गई थी। उसे परेशान देखकर आयशा इसके बचाव में उतर आई थी और इशिका को भला बुरा कहने लगी। वो उसका कंपैरिजन मालविका से करने लगी। दोनों के बीच में झगड़ा होते देखकर प्रणाली ने हड़बड़ाते हुए कहा, देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोग बहस मत कीजिए, अभिमन्यु और मैं एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है, मुझे हमारे रिश्ते पर नाज है, मैं दादी का ख्याल नहीं रख पाती, तुमने उनका ध्यान रखा उसके लिए थैंक यू। प्रणाली अभी भी इस बात का खुलासा नहीं कर रही थी कि उसकी और अभिमन्यु के बीच में क्या रिश्ता है, आखिर वो कहती भी क्या। इसका मतलब तुम मिसेज राजवंश नहीं हो, इशिका ने उसे पकड़ लिया था। तुम किस हक से आंटी से सवाल जवाब कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है ये दोनों साथ नहीं रहते, या ये बीमार है तो तुम अपनी माँ की तरह चाचू की जिंदगी में दूसरी औरत की जगह ले लोगी? इशिका, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मैं, आयशा ने गुस्से में कहा। तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ आकर लगा जो कि राधिका ने लगाया था। अब वो उसके शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जो जानबूझकर आग में पेट्रोल डालने का काम कर रही थी। आयशा नम आंखों से राधिका की तरफ देख रही थी। वो रोते हुए बोली, आपके लिए आपकी सौतन की बेटी मायने रखती है और मैं नहीं, मैं बस इसे इसकी माँ की तरह बनने से रोक रही हूँ, ये घर तोड़ना चाहती है मेरे चाचू और आंटी का। चुप रहो तुम दोनों, मेरी ही गलती है जो आज तुम दोनों ऐसी हो गई हो, राधिका ने गुस्से में कहा। इशिका ने भी उसके पास आने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया था। इशिका जानती थी कि अब एक ही चीज थी जो उसकी सच्चाई पर यकीन दिला सकती थी, और वो था उसकी मैरिज सर्टिफिकेट। वो जल्दी से कमरे के अंदर गई और अपना बैग लेकर आई। इशिका ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट तुरंत राधिका के हाथ में रखते हुए कहा, एक बार इसे देख लीजिए, फिर ही कुछ डिसाइड कीजिएगा। इतना कहने के बाद इशिका ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट राधिका के सामने कर दिया था। उसे देखने के बाद इशिका को अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस सर्टिफिकेट के हिसाब से इशिका और अभिमन्यु शादीशुदा थे।